نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم آیت نمبر 164 سورة آل عمران ہم نے اس میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں انقلاب لانے کے لیے ضروری ہے آپ اس آیت کے اگر ٹاپک بنانا چاہیں یا اس کا کوڈ ورڈ بنائیں تو انقلاب نبوی کا چار نکاتی طریقہ قرآن پاک میں ترتیب تھوڑی سی بدل کے یہی بات ہم نے سورۃ بقرہ 151 میں ہم نے یہی بات ترتیب کے فرق کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی صورت میں دیکھی تھی آخری لفظوں کا کچھ فرق ہے یہاں اس دعا کی قبولیت ہے اگر آپ سب ماشاءاللہ ذہنی طور پہ جو باتیں ابھی تک تین چار سفاروں میں ہم نے پڑھی ہیں اس کے ساتھ ہیں تو آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل نے جو دعا مانگی تھی 4000 سال کے بعد وہ دعا لقد من اللہ علی المومنین کی صورت میں پوری ہوئی چند باتیں جو اس میں سے میرے آپ کے لیے مزید غور و فکر کی ہے ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی آیت پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی پہلی بات ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کو احسان قرار دیا گیا لقد من اللہ علی المومنین اس بات فیہم کیوں احسان اس لیے کہ انسان انسان کے جذبات کو سمجھتا دوسری بات ہے ہم قوم تھے ایک قوم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں محاوروں کو سمجھتے ہیں مجبوریوں کو سمجھتے ہیں خاص طور پہ نبیوں نے اللہ کا پیغام دینا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہارمنی ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو تو ہم جنس ہوں گے مانوس ہوں گے قریب ہوں گے تیسری ایک اور بہت بڑی وجہ لکھے گا کہ انسان کے لیے انسان کی پیروی تو ممکن ہے فرشتوں کی نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہوتے یا کوئی نورانی مخلوق ہوتے تو پھر ہم اور آپ کیسے ان کی پیروی کرتے نہ تو فرشتوں کی ضروریات ہماری ضروریات سے ملتی تھیں اور نہ ان کی خواہشات اور نہ ان کے اندر اور باہر کی چیزیں تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک احسان ہے امت پر یہاں سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے میرے لیے عمل کی نکلتی ہے وہ کیا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن تبلیغ تھا نا انذار تھا تو آپ نے لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھایا تو میرے آپ کے لیے بھی یہ عمل کا نقطہ ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کی بات کہنے نکلیں جس حد تک ممکن ہو حرام میں پڑے بغیر اپنی ڈیسنسی ویسٹ کیے بغیر جس ماحول میں جا رہے ہیں نا اس ماحول کا حصہ بن کے جائیں اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر زبان ہر ماحول ہر کلچر ہر ملک کے مبلغین تیار ہونے چاہیے آپ ناروے میں رہتے ہیں ہم باہر سے آئے ہیں ہم جتنی مرضی نارویجین سیکھ لیں ہماری نارویجین بولنے کا انداز ایسا ہوگا کہ یہاں کے لوکل لوگ مسکرا پڑیں گے ہماری مثالیں پھر بھی پاکستان کے کسی شہر اور دیہات کی ہوں گی یہاں کی نہیں ہوں گی یہاں کے لیے اسی سوسائٹی کے پلے ہوئے مبلغین ضروری ہیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب پہ بھی ہم دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہیں نا ہمیں وہاں کی نسلوں کو تیار کرنا ہے اس سوسائٹی کا مقدر وہ بدل سکتی ہیں اور باقی رہ گئی کہ نبی بشر تھے کہ نور تھے تو قرآن میں تو بار بار آتا ہے چند ریفرنس نوٹ کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے پیغمبر بشر تھے پہلا ریفرنس سورۃ یوسف آیت 109 وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم رجل کا لفظ مرد کے لیے آتا ہے کہ جتنے بھی بھیجے وہ رجال تھے جن پہ وحی کرتے تھے یعنی فرشتے نہیں تھے پھر سورۃ فرقان آیت 20 وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق کہ سب کھاتے پیتے اور دنیا کے کام کرتے تھے لوگ اور خاص طور پہ سورۃ حامیم سجدہ آیت 6 میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کبھی بھی کوئی ایسا جھگڑا کرے نا تو آپ بولیں نا آگے سے ابھی آپ کا علم پختہ نہیں ہے ایسی بحثیں تو میں نے نہیں کبھی چھیڑی آپ لوگوں کو بھی نہیں موقع دوں گی کہ آپ ایسا کریں بٹ آپ کا اپنا دل مطمئن ہونا چاہیے اس بات پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم میں تمہیں جیسا ایک فرد ہوں بشر ہوں فرق ہے کہ یوہا الیہ میری طرف وہی آتی ہے تم پہ وہی نہیں آتی لہٰذا اس چیز کو سمجھ لیجئے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو نبوت کے بڑے بڑے مقاصد بیان کیے گئے نا، تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت، اس سب کو بھی سامنے رکھیں تو آج ہمیں تبلیغ کے دوران انہی نقطوں پہ بات کرنی ہے. آپ نوٹ کریں، اس میں نہ تو فرقہ واریت کی بات ہے، نہ فقہی پیسے ہیں، نہ بہت زیادہ اس کے اندر مناظروں کا انداز ہے. تلاوت آیت، سیدھی سی بات ہے، جب تک تلاوت نہیں ہوگی، اور تلاوت میں لفظوں کی ادائیگی سے لے کے عمل تک بات جاتی ہے. تلا یتلو تلون، پیچھے لگنا، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں. اگر ہم قرآن ٹھیک ہی نہیں پڑھیں گے تو مجھے یہ بتائیے دوسروں کے دل پہ ہماری بات جائے گی؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں اس کے ایک ایک لفظ پہ اجر ہے، مقدس عمل ہے، نیک ہے. پڑھنے والے کو سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا، ٹھیک پڑھنے پہ اجر ضرور ہے، اور ٹھیک پڑھنا اللہ کے حکم سے پھر آگے اس کو سمجھنے میں بھی مددگار ہوتا ہے. تو یہ کبھی نہ کہیے کہ طوطے کی طرح پڑھنا، حافظ بن گئے ہیں جی، قاری بن گئے ہیں جی. نہیں 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 توبہ کرے، اللہ کے کلام کے الفاظ منہ پہ آ جائیں، اچھے آ جائیں، اس سے بڑی کیا بات ہے. تو لہٰذا آپ کا میرا پہلا گول، آپ اب چوتھے پارے کے اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں، اپنی تجوید پہ غور کیجئے، کیا ان چار پاروں میں میری تجوید بہتر ہوئی؟ اور اگر نہیں ہوئی تو ایک ذرا سے ایک پرسنل کوسچن خود سے کر لیجئے کہ تجوید کی کلاس تک میں پہنچ چکی ہوتی ہوں؟ میں اس کو سنجیدگی سے لیتی ہوں؟ کیا میں پڑھنے کو صرف تفسیر سننے کا نام تو نہیں دیتی؟ اور سن بھی لیتے ہیں الحمدللہ، تو کیا گھر جا کے اس کے اوپر کوشش کرتی ہوں؟ تو یہ میرا آپ کا فرض ہے، جس کو اپنی زندگی کا گول بنائے. ایک چھوٹی سی چیز ابھی مجھے ذہن میں آئی ہے کہ قرآن کا صحیح پڑھنا، اس کے لیے کچھ حصہ یاد کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، کیونکہ یاد کرنے کے دوران غلطیاں بہت نکلتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تھوڑا سا حصہ قرآن کا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے نا، وہ تزکیے کی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نے تزکیہ کس چیز کا کیا؟ سب سے پہلے سوچ کا تزکیہ، اور وہ ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، یعنی عقیدے کا، سوچ کا، اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ساری ادھر ادھر کی چیزیں جو ہم نے اپنے دلوں میں ڈالی ہوتی ہیں، اس سے اپنے دل کو پاک کر دیں. لا کی تلوار سے سارے الہوں کا کلا کما کر دو تاکہ الا اللہ سمجھ آنے لگے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور جس سوسائٹی میں اللہ کے نبی تھے وہاں کوئی چھپے ڈھکے بت نہیں تھے، سامنے رکھے ہوئے بتوں کو پوچھتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ اللہ کو پوچھتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں. تو شرک سے پاک کرنا یہ میری آپ کی زندگی کا گول ہونا چاہیے. کل میں نے آلموسٹ 20 منٹ کا ایک لیسن دیا اٹلانٹا والوں کو کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ مجھے اپنی نہ آپ کو اپنی، تو ایک ریمائنڈر لسٹ دی ہے کہ ہم کچھ کر کے رکھیں، بیسکس تو پورے کریں. اس میں پہلی چیز یہی تھی کہ ہم توحید اور توحید کے تقاضے اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ اس سے پہلے بہت ہی گمراہی میں تھے. آپ دیکھیے کہ جو عرب لوگ تھے جہاں اللہ کے نبی آئے، وہ کوئی کافر لوگ نہیں تھے، نبیوں کی اولاد تھی، لیکن بگڑ گئے تھے، علم سے دور تھے. جیسے آج ہم میں سے کچھ لوگ آج کتاب کے ساتھ بالکل ایک سطحی سا تعلق رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس چیز کا تزکیہ؟ آنکھوں کا تزکیہ. نظریں گندی چیزیں دیکھیں ہی نہ. میں کہتی ہوں صرف آج آپ اپنی سوسائٹی میں اور ہر ماں اپنے گھر کی خبر لے لینا، تو بچوں کی نگاہوں کا تزکیہ کر دیں. یہ سارا میڈیا اور ویژن جو ہے نا آپ کے سامنے، ویژول تھنگز، اس کی تطہیر ہو جائے گی. نہ گندی چیزیں دیکھنی ہے نہ سننی ہے، نہ کانوں میں میوزک جائے نہ کچھ جائے. ایسی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آج کل لوگ جنید جمشید کی محبت میں بہت کچھ کر رہے ہیں، تو ان کا سوال کیا تھا؟ وہ سوال ہی اصل میں جواب ہے. کہنے لگے کتنے لوگوں نے اس کی محبت میں ہی گانے کو چھوڑا، میوزک کو چھوڑا، کیونکہ اس نے چھوڑا تھا. اصل بات تو یہ ہے، یہ ہے تزکیہ. دیکھیے نعتیں لگا دینا، گانے کی جگہ یہ کر دینا، آپ محبت کرتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ان کی محبت میں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کچھ کرنا ہے کچھ چھوڑنا ہے. تو یہ تو کل کی شخصیت ہی اگر لوگوں کو اچھی لگتی تھی تو پھر اس کی محبت میں آپ بھی لات ماری ہے میوزک کو، اس نے بھی تو ماری تھی نا، اس نے بھی یو ٹرن لیا تھا، آپ بھی لیجیے. اس نے گناہ سے توبہ کی، آپ کیجیے. چلیے دور والوں کو نہیں، قریب والوں کو رول ماڈل بنا لیجیے. جس نے بدلنا وہ بدل جائے گا، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے کانوں کا تزکیہ، کوئی گندی چیز کانوں میں نہ جائے. پھر اسی طرح سے سوچ کا تزکیہ، اپنی سوچوں کو پاک کیجیے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں تزکیے سے مراد اللہ کی اطاعت اور اخلاص ہے، اس کی آج سوسائٹی کو ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں باہر کی پاکی، گھروں کو صاف رکھنا، سڑکوں کو پاک رکھنا، ملکوں کو پاک رکھنا. آج کل جتنی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، یقین کریں دل نہیں کرتا باہر کی کوئی بنی ہوئی ایک چیز بھی کھائے. जो गंद बला मिलाकर लोगों को खिलाने की कोशिश है, कुछ झूठा तो सच भी तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो आज उम्मत के इनफरादी तस्किए की जरूरत है, पाक हों दिल, पाक सोच, पाक ताल्लुकात, पाक हों सिला रहमियों से, ताल्लुकात ना कटे, नाजायज ताल्लुक ना हो, फहाशी और बोहतानबाजी से सोसाइटी को हमने पाक करना है, हमने इदारों को करप्शन से पाक करना है और इसी तरह तवहमात से पाक करना है, और सबसे मुश्किल पाकी गलत रसूम और रवाज की पाकी जिसमें आज हम इंडल हो चुके हैं। सब मानते हैं गलत कार्य, फिर कहते हैं क्या करें छुटता नहीं, हाँ छोड़ेंगे तो फिर ही छुटेगा ना। फिर इसी तरह जाहिलियत की जिंदगी से सोसाइटी को पाक करना है, दूसरी कौमों की नक्काली से पाक करना है, गैर कौमों की गुलामी से पाक करना है, बेकार और घटिया किस्म की एक्टिविटीज से खुद को पाक करना है, वेस्टर्स वल्गर थिंग्स जो जिंदगी को जाया कर देते हैं, ये सब करेंगे तो आप जरा सोचे क्या खूबसूरत सोसाइटी होगी। और आखिर में आप देखें कि जो तीसरी चीज जिसमें आप इसको यहां कह सकते हैं और वो किस चीज की पाकी है या तस्किया के बाद, तालीम किताब व हिकमत। ये तीन नुक्ते हैं, मैंने इस पे दर्स दिया हुआ है, मुझे याद उसका नाम नहीं इस वक्त, अभी तकरीबन 5-6 माह पहले ही दिया था। ये तीन काम कर लें, आपका पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा, पूरी दुनिया में मुसलमानों का गलबा होगा इंशाल्लाह। और तीसरी चीज क्या है कि तालीम किताब व हिकमत, यही मकासद शरीयत है, सोसाइटी की तथहीर हो जाए और इल्म दिया जाए। तो इसमें अगर आपका हिस्सा डलता है तो डाल लीजिए, जितना डाल सकते हैं डाल लें, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है, कम है, और कल हम भी कहेंगे कि अल्लाह ताला हमने कोशिश तो की थी। और हिकमत से मुराद ना सिर्फ ये कि कुरान की तफसीर, बल्कि इससे मुराद नबी सल्लम की हदीस भी है। आज आप देखिए नबी की मोहब्बत में रबी अव्वल में क्या कुछ हो रहा है, कितनों ने कहा कि आओ जरा बुखारी पढ़ते हैं, आओ जरा मुस्लिम पढ़ लें, एक दौर ही कर लें। पहले दौर में तो लोग जब किसी मुश्किलों में पढ़ते थे ना तो वो दौर करते थे बुखारी का, मिथ थी कि कहर साली है ना, सही बुखारी का दौर करो, उसकी बरकत से खत्म होगा। और वजह क्या कहते थे, कहते थे देखो हर हदीस के बाद हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते हैं जहां इतना दुरूद पड़ा जाए वहां रहमतें उतरती हैं, और रहमतें उतरेगी तो हमारे कहत और हमारी खुशकसालियां खत्म हो जाएंगी। आज ये चीजें क्यों नहीं करते, आपको अभी तक रबी अव्वल की इतनी इन्विटेशन आई, कहीं बुखारी मुस्लिम हदीस का कोर्स, कोई हदीस की अहमियत उस पर बात हुई? यहां से समझिए कि मेजॉरिटी को शैतान ने किस काम पे लगाया हुआ है कि जो काम नबी सारी जिंदगी में खुद करते रहे उसकी तरफ आने की बजाय दूसरी चीजों के साथ लेके जाता है। सिंपल सी बात है, बस यही करना है। अब इसके बाद देखिए दोबारा ओहद के मैदान में हमें लेके जाया जा रहा है, और सहाबा से जो खता हुई और उस खता से मुसलमानों को नुकसान हुआ तो उस गिल्ट से निकाला जा रहा है। नोट कीजिएगा 165 को, अब अलम्मा असाबत को मुसीबत, और क्या जब तुम पर एक मुसीबत आई, कद सब तुम इसलिए ही हा, जबकि तुम इससे दुगनी मुसीबत उनको पहुंचा चुके थे, कब बदर में। तो कुल तो मन्ना हाजा, फिर तुम कहने लगे ये कहां से हो गई, ये क्यों हुआ, अल्लाह ने हमारी मदद क्यों ना की, पहले तो बदर में कर दी थी अब क्यों नहीं की। यानी किलो काल शुरू हो जाती है उसकी तरफ इशारा, तो जवाब ले लो, कुल कह दीजिए हुआ मैंने इन दी अनफुसिकुम, ये जो मुसीबत आई है ना ये तुम्हारे अपने करतूतों का किया धरा है, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में बंदे पर जो मुश्किल डालते हैं वो उसके अपने ही किसी अमल की सजा होती है। और इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। बात बिल्कुल वाज़ह है कि ओहद की शिकस्त को कबूल करने को जहन तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये तसव्वुर आ चुका था कि नबी की मौजूदगी में शिकस्त नहीं हो सकती। ये बात याद रखी, लिख लें। आज भी लोग कहते हैं दीन पे आएंगे तो जरूर ही खैर होगी, चूंकि हमने इस्लामी तरीके से शादी की थी ना तो अब घर जरूर बसेगा। अब तलाकों की लोग कहते हैं लो और जाके मक्का में उस निकाह करो, और जाके इस्लामी तरीकों से शादियां करो, देखो देखो तुमने चौ नहीं ना पूरे की इसलिए बात नहीं बनी। तो उसका जवाब है कोई जरूरी नहीं दीन के मुताबिक जीने वाले को भी अल्लाह दुनिया में फतह दे। लिख ले, मैं ये जुमला बहुत दफा बोलती हूँ अपने पूरे कुरान के सफर में, आप भी लिख लीजिए, हमारा दीन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, एफर्ट ओरिएंटेड है। उर्दू में बोल देती हूँ, हमारा दीन नताइज को नहीं देखता, कोशिशों को देखता। हमारी आपकी इन कोशिशों से क्या नतीजे निकल रहे हैं हमें इससे कोई परवाह नहीं, 100 आ रहे हैं कि 10 आ रहे हैं कि 20 आ रहे हैं, और जो आते हैं वो भी कितने को अमल वाले हैं हमें इससे कोई परवाह नहीं। हमने ये देखना है कि हम 1000 को बुलाने की कोशिश करते हैं 100 आ जाता है, बस हमारी कोशिशें हैं। कल फायदा हो तो दिल की खुशी है, ना हो तो अजर जाया नहीं होता। वरना देखिए हजरत हमजा का अजर जाया हो गया, लो जी जिस जंग में वो मारे गए वहां तो शिकस्त हो गई थी, मुसअब बिन उमैर का जाया हो गया, बीबी सुमैया का जब जाया हो गया, नहीं ये बीच के रस्ते के प्रोसेस थे, जैसे आप खाना पकाते हैं ना तो आखिर में टेस्ट आता है, लेकिन बीच का कोई मरहला ना करें तो वो मजा नहीं आएगा खाने में। तो ये जो इस्लाम की आज के दौर की भी कोशिश है ना, हमें पता है इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा जाहिर, लेकिन हम कहीं छुप जाएंगे, हमारी ये कोशिशें कहीं दब जाएंगी, हमारी जिंदगियों में खैर ना भी आई लेकिन आगे जाके जरूर आएगी। तो कहा क्या कि नतीज को मत देखो, पीछे तो याद करो, तुमने तो तुम्हारे तो सिर्फ 70 शहीद हुए और शहीद होते ही उन्होंने जन्नतों में जाना है, तुमने तो उनके 70 को मारा था और 70 को कैदी बना दिया था, तो तुमने तो उनको दुगनी मुसीबत दी थी। यह लफ्ज देखिए तकरार के साथ आ रहा है, असाबत कुम, अगर आप नोट करें ना तो इस आयत में असाबत कुम फिर मुसीबत फिर असब तुम, ये तीनों एक ही रूट है। अब तीनों का जरा कनेक्शन देखिएगा, स्वाद वो बा है, पीछे आप ये लफ्ज पढ़ चुके हैं, कसैयिब मिनस समा, जोर की बारिश आसमान से पड़े, तो साबा या सूब सौबन कहते हैं गिरने को, ऊपर से नीचे गिरना, इरादा करना, बारिश का गिरना, क्योंकि बारिश भी ऊपर से नीचे गिरती है ना, इसी तरह सौब या सवाब, स्वाद से लिखिएगा सा से नहीं, खता की जिद है, यानी खता क्या है ऑपोजिट हो गया, और सवाब क्या होता है कि निशाने पे चीज लग गई, तो किसी चीज का उतरना और उतर कर अपने ठिकाने तक पहुंचने को सौब कहते हैं। अब यहां से आप देखिए, जब कोई बात अपनी जगह के मौके पर ठीक की जाए तो उसको सवाब कहते हैं। आपने कभी हदीस पढ़ी है ना, तो कहते हैं ये साहिबुर राय है, साहिबुर राय, साहिब इसकी राय बड़ी ठीक है, स्ट्रांग इसका विजन है, इस तरह कह लीजिए। इसी तरह सहम व साहिब उस तीर को कहते हैं जो ठीक निशाने पर पहुंच जाए। सौब के मानी बहाने और ऊपर से उतरने के भी होते हैं। अब ये सारी बातों के अंदर लफ्ज है मुसीबत, आज आप मुसीबत की असल समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और वो क्या है कि मुसीबत उस तीर को कहते हैं जो निशाने पर जाकर बैठ जाए। इसके बाद हर हादसे को और हर वाक्य को मुसीबत कहते हैं। मुसीबत क्या होती है, आप कहते हैं ना किसी की आती मुझ पे आ गई, मरना किसी और ने था आगे मैं आ गया, नहीं मुसीबत जो मेरे आपके ऊपर आती है ये एग्जैक्टली वहां आती है जहां हमें आनी होती है, सजा होती है हमारे किसी गुना की या हमारे किसी दर्जे की बुलंदी होती है। बिल्कुल इसी तरह से लफ्ज मुसीबत यहां पे आ जाता है। इसी से फिर सैयब था वो बादल जो बारिश बरसाए, बरसने वाला बादल यानी रेन के मानों में। फिर इसी तरह से कुछ और लफ्जों में भी ये समझ आता है, तो आपको मुझे यहाँ ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करते, ये अल्लाह की सुन्नत है कि जो काम आपने मैंने किया वो हमें भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कि यहाँ इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर आया, आप कह सकते हैं गोया इसी मजमून को यहाँ दोहराया गया जो 152 में बयान हो चुका। क्या था 152 के आखिर में, कि अल्लाह अपना वादा पूरा कर चुका, दुश्मन पर तुम गालिब आ चुके थे मगर तुम्हारी गलती से जंग की हालत बदली थी, तो अगर अल्लाह तुम्हें सजा ना देता या बगैर सजा के माफ कर देता तो तुम्हें समझ ही नहीं आनी थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लिहाजा अगली आयत में वमा असाबकुम यौमल तकल जमानी फबीस्निल्ला, और जो भी मुसीबत तुम पर आई उस दिन जब दोनों लश्कर आपस में भिड़ गए थे वो अल्लाह की इज़्ज़त से थी। वलियालमल मोमिनीन, और ये इसलिए थी कि अल्लाह जाहिर कर दे ईमान वालों को। नोट कीजिएगा तीसरी भी बात आगे जो उसमें मतलब आ रही है वो क्या है कि ये जंगें क्यों लड़ी जाती हैं। नंबर एक आपने पढ़ लिया मैंने भी कि तुम्हारे गुनाहों की सजा, ठीक है। दूसरी बात वली यालमल मोमिनीन आयत 166 के एंड पे, ईमान वाले अलग हो जाएं, याद रखिए जंगे ना होती तो सहाबा कराम का असल किरदार खुल के सामने ना आता, जौहर जो उनके अंदर छुपे हुए थे ना वो बाहर नहीं आने थे। ये जंगों का एक और दूसरा बड़ा मकसद होता है, बातें करने वाले तो बहुत हैं लेकिन वक्त पड़ने पर कौन है जो इन बातों में करके दिखाते हैं, आप गुफ्तार के नहीं किरदार के गाजी हैं। और हकीकत है कि लोग जंग को बुरा कहते हैं हालांकि जंगों में से ही तो शोहदा निकलते हैं और जंगों ही के मौके पे तो इंसान की असल खुल के आती है। तो अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ यही बात करके बता दिया। और ये जो आयत हमने पढ़ी है ना जो 165 के जो मुसीबत आई और तुम्हारे अपने नफ्सों पे, इस पे एक वाक्या भी आता है। हजरत उमर फारूक से रिवायत है कि बदर के कैदियों को फिदिया लेकर जो छोड़ा था उनकी गिरफ्त ओहद में हुई। आगे आप पढ़ेंगे, यानी बदर के कैदियों को छोड़ना नहीं चाहिए था लेकिन छोड़ दिया, माल लेके छोड़ दिया कि इस्लाम को फायदा हो। वही वापिस आ गए ओहद में लड़ने के लिए, तो उनको पकड़ लिया, उहद के मैदान में अल्लाह ने मारे तो उन्होंने जाना ही था, एक साल बाद मारे गए और 70 सहाबा भी शहीद हुए और नबी सल्लम का दान मुबारक भी शहीद हुआ, सर भी जख्मी हुआ। उस पर कहते हैं कि याद जो थी ये उतरी थी। अल्लाह सुबहाना तला कहते हैं कि माजी की गलतियों से सीखो, यानी इन दोनों आयतों में से मेरा आप कामल के अपनी गलतियों को याद रखो और अगर कभी फतह हुई तो उसके नशे में बहुत ज्यादा फूलने नहीं लग जाओ। फिर इसी तरह से एक और चीज पता चलती है इससे, एक ही चीज में खैर भी होती है और शर भी होती है। फिर इसी तरह से एक और चीज पता चलती है कि इन जंगों के मौकों में आपस के इत्तेहाद और दिलों के खोट का भी पता चलता है। इसीलिए अगली आयतों में फरमा दिया कि एक तरफ तो सच्चे मोमिनों का पता चलता है, बल्कि 176 वलियालमल्लजीना नाफकू, और ताकि इन लोगों को भी जाहिर कर दे जिन्होंने मुनाफकत इख्तियार की। ली या लमु, देखिए ली लामे तालील होता है, ताके जान ले, क्या मतलब है कि अल्लाह जाहिर कर दे, उसको तो पता है तुम्हें भी दिखा दे, ये मुराद है। कौन अब्दुल्ला बिन उबई है और कौन अबू बकर है? अल्लाह ताला ने ये बात इस तरह करके बता दी कि हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। वकील लहुम तआलौ कातिलु फी सबीलिल्लाही, और इन मुनाफिकों से कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो, अभी दफाओ, या कम अज कम अपने शहर का दिफा तो करो। इशारा उधर ही अब्दुल्ला बिन उबई के 300 साथियों की तरफ, कि जब अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेकर जा रहा था तो इस वक्त इनसे कुछ लोगों ने कहा होगा कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, चलो ना लश्कर सामने है, अगर 1000 में से 300 निकल गए तो बाकियों के दिलों में भी कमजोरी हो जाएगी। अगर तुम मैदान जंग में दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते तो कम अज कम मदीना के दिफा के लिए तो खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर मदीना पे हमला हो गया तो क्या बनेगा। लेकिन कालू, अब यहां लिखिए ये इतने कड़वे जुमले हैं, जाहिर में इस्लाम था, दिल में निफाक था, लेकिन असल में कुफर था। ये है अब्दुल्ला बिन उबई के 300 लोगों का तारुफ। फिर बोलती हूं, जाहरी इस्लाम, अंदर निफाक और असल में कुफर। अल्लाह माफ करे, आज के 2 बिलियन मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे होंगे। लोगों ने हमें मुसलमान समझा हुआ है, मजहब के खाने में इस्लाम है, लेकिन जरा इनकी बातें सुने। अब आप देखिए ना, इस्लाम की कॉज से पीछे हट रहे हैं, इस्लाम को मुश्किल में डालकर अपनी जान बचा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं रुक जाओ भाई, ये क्या कर रहे, किधर चल रहे, अगर आप ना होंगे आपके हिस्से का काम कौन करेगा, आप हमें ऐसे तनख्वाह छोड़ के क्यों जा रहे। तो आप जरा सुनिए ये जुमानी जुमले, ये मुनाफिक के अलावा और कोई नहीं बोल सकता। कालू, बोले लो नालमो की तालन, अगर हम समझते कि जंग होनी है, एक मानी, और दूसरा इसका मानी लिखिएगा लो नालम कितालन, अरे भाई अगर हमें लड़ना बढ़ना आता होता तो लत तबा ना कुम, तो हम जरूर तुम्हारा साथ दे देते। यानी पहली सूरत में क्या, ये जुमानी जुमला है, जुमानी कहते हैं दो मानी, ड्यूल मीनिंग्स। क्या पहले कहते थे ये कोई जंग शंग नहीं है, ये खुदकुशी करने जा रहे हैं, अब अगर कल बदर में ये जीत गए तो इनका ख्याल है अभी हमेशा जीतेंगे, वो तो इत्तफाकिया जंग हो गई थी, अब अबू सुफियान के काफिले से मुलाकात हुई, वो कोई जंग के लिए थोड़ी आए थे, अब तो ये जंग की नियत से आए हैं, और खाम खा ये तो एक नूरा कुश्ती और बस, ये जंग जुंग है नहीं, नबी सल्लम के सर में जो आता है वो कहते थे और ये मुहाजरीन उनके साथ चल पड़ते हैं, तो हम तो जी इसको जंग ही नहीं समझते। मानी जैसे आज कई लोग कहते हैं ये कोई जिहाद नहीं है जी, मुल्कों के नाम लेके कहते हैं फलां मुल्क का जिहाद, ये जिहाद नहीं है जी, ये तो सियासी जंगे हैं, ये फुलानी, ताकि हमें कोई ना कहे, एक मानी ये था। दूसरा इसका मानी क्या है, तंज कर रहे हैं, हमें तो जी कुछ करना ही नहीं आता। जब इनकी बात नहीं मानी जाती ना, देखिए किसी भी गिरोह में कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं सेल्फ सेंटर्ड, वो कहते हैं हमारी तारीफें करो, जरा सी उनके किसी काम पे आप पूछ ही ले, जुर्रत कर ले, मैं कहती हूं डरते पूछते, वो ऐसे बिफरी हुई शेरनी की तरह आपके ऊपर घूमेंगे, या भेड़ों के छज्जे में हाथ लगाना कि आप कहेंगे इज्जत रख के चुपके से बैठे रहो कुछ ना ही को। इनको बुरा लगा कि हम पे तनकीद हो रही है, तो कहते जी हमें तो कुछ करना ही नहीं आता। अच्छा ये भी एक अंदाज होता है, आप अपना काम करते हैं, देखिए जो काम करते हैं वही गलती करेंगे। कल के सबक में कितनी क्लियर बात हो गई कि कोई दीन के काम करने वाले या अल्लाह के रस्ते में आने वाले परफेक्ट नहीं होते, काम करते हैं तो गलती करते हैं। मासियां बर्तन धोती हैं तभी टूटते हैं ना, आप नहीं धोती तो आपसे नहीं टूटते, सीधी सी बात है। तो ये तो होता है, बास दफा शैतान बंदे के दिल में ये ख्याल डालता है कि तुम ठीक नहीं कर रही, तुम हट जाओ तो कर ले कोई, असल में निकलना खुद होता है, अगले को क्या कहते हैं, नहीं हमारी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है इदारे का, फिर हम हट जाते हैं, फिर बहुत अच्छे लोग होंगे। वे किधर है इस वक्त? तो आप उतर के जा रही हैं, कोई दिख रहा है आपसे अच्छा कि उसको आपने ट्रेन कर दिया, अपने से बेहतर ले आए हैं ताकि वो आपकी जगह संभाले? नहीं, वो अल्लाह दे देगा। तो देखिए, गाड़ी चलते के दौरान आप हाईवे पे हैं, E6 पे जा रहे हैं फुल स्पीड के साथ, और एकदम आपके दिल में आता, नहीं मैं तो अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, इनको अल्लाह कोई अच्छा ड्राइवर दे दे, मैं तो हादसा ना कर दूं, ये ना करूं, तो आप चलती गाड़ी में से छलांग लगा दें, तो मुझे बताएं कि वो गाड़ी आगे जाएगी कि खाई में गिरेगी। कई लोग अल्लाह के रस्तों में ये एक मजाक करते हैं, अल्लाह की कसम ये मजाक इतना आम है। एक अपना सा फायदा, छोटा सा फायदा, कोई कोर्स मिल गया, कोई जॉब मिल गई, कुछ और पैसों का मामला मिल गया, कोई और ही कॉज दिमाग में आ गई, चलते चलाते काम को गाड़ी में से छलांग लगाते की तरह छोड़ के यतीम मस्कीन गरीब करके दीन को खुद दुनिया कमाने चल पड़ते हैं। क्या अल्लाह नहीं देखता? अल्लाह देखता। फिर अल्लाह उधर से जब पकड़ता है ना, फिर चीखें निकलती हैं। याद रखिए, जो हम काम कर रहे हैं अल्लाह जी हमें यही आता है, करा लो। कल भी ये बात हुई थी, किसी का काम पे लगे रहना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने उसको ले ऑफ नहीं किया। हाँ भी नहीं आता, लो ना अमल कित नहीं आता, लेकिन अल्लाह सिखा ले, अल्लाह सिखा लेगा। लेकिन जब आप अपनी जान छुड़ाने के लिए कहते हैं ना, हमें तो नहीं, आपको तो जी प्रोफेशनल्स चाहिए, तो लाइए, हमारी भी ये ख्वाहिश है, आप प्रोफेशनल बन जाए, आप नहीं कर सकते प्रोफेशनलिज्म, तो लेके आइए, अपने से अच्छे लोग लाइए, उनको ट्रेन कीजिए, आप साथ रहें। ये नहीं कि आप उनको किसी और का नाम देख के या बगैर दिए आप गायब हो जाए और कभी शक्ल भी ना दिखाएं। आज पूरी दुनिया में दीन के साथ ये मजाक कर रहे हैं मुसलमान, सिर्फ अपने चंद थोड़े से फारिग वक्तों को यूज करने के लिए, या अपने अंदर का एक उबाल और एक जोश दिखाने के लिए हम किसी नेकी की कॉज में पड़ते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये करेंगे वो, और अब नहीं, अब सॉरी मेरे हालात बदल गए हैं, चलो जी तुम सारे घर जाओ, मैं जा रहा हूँ। नेवर डू दिस। याद रखिए, अल्लाह को बंदे की नमाज रोजे की इतनी परवाह नहीं है जितने इस बात की परवाह है कि मेरे दीन को तनहा छोड़कर तुम अपनी रंगरेलियां मनाते हो। अब्दुल्ला बिन उबई के जुर्म को देखिए ना, निकला क्यों? मुंह दिखाना पड़ता है, मुरव्वत थी, लोग कहेंगे देखो देखो हम सारे अल्लाह के रस्तों में लगे हुए, ये घर में मौजें कर रहे हैं, निकल आया। चलो ना निकलता ना, तो मुसलमान उस सोच के साथ निकले होते। आप घर से ही, आपने एक ट्रिप असाइन किया, सिर्फ मिसाल समझाने के लिए कर रही हूँ, आप यहां से निकले चले किसी दर्स में जाने के लिए, आप तीन गाड़ियां निकली, तीन ना निकले, दो निकले, सबको पता है हमारे साथ दो गाड़ियां, खत्म हो गई बात। तीन निकले और वहां जाके पता चले आधे रास्ते में खड़ी है, भी क्या हुआ, खड़ी नहीं, हम वापस जा रहे हैं, ये वो। तो जो दो बाकी गाड़ियां वाले, उनमें से आधे लोग क्या सोचेंगे, हमें भी जाना चाहिए। याद रखिए, दीन के रास्ते में अपनी कमिटमेंट्स को छोड़कर चाहे आप हज पे चले जाएं, वल्लाही मैं अपने ईमान और अकीदे के साथ आपको कहूंगी, आप हज पे चले जाएं, 500 दाने की तस्बीह घर बैठ के पढ़ते रहे, लेकिन आप अपनी क्लास छोड़कर या आप सबक छोड़कर कोई बड़ी से बड़ी नेकी करें, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। सीधी सी बात है, नेकी करनी क्या मुश्किल है जी? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप उम्रे पे जाना सोच रही थी, छुट्टियों में जाइए, जहां भी जाना छुट्टियों में जाइए, अगर आपके हाथ में प्लानर है, प्लान कर सकते हैं, तो फिर जरूर कोशिश करें अपनी कमिटमेंट ना छोड़ें। और ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, इसलिए कि देखिए कमिटमेंट करके निभाना ये बंदे की वैल्यू डलवाता है, कीमती, ये पत्थर का है ना, ये कीमती नहीं है, ये ड्यूरेबल है, चाहे डालते हैं ये नहीं फटेगा, चाहे हम इसमें डालते हैं ये जलेगा नहीं, हम ले लेंगे इसको, और डर हो कि इसमें चाय डाली ये फट जाएगा, ये गल जाएगा, ये उबल जाएगा, चाहे ये क्रिस्टल का भी होगा, मैं इसमें चाय नहीं डालूंगी। अल्लाह अपने उन बंदों को चुनता है। मुझे तो लगता है सबसे बड़ी आज के दौर की नेकी क्या है कि अल्लाह के रास्ते में खड़े हो जाओ। अब्दुल्ला बिन उबई पे तनकीद क्यों हो रही है इस आयत में कि इसने अपनी जान बचाई, तो बाद में कहा नहीं जी हमें कुछ करना ही नहीं आता, ये शैतानी अमल है, करना नहीं आता तो सीखो, ये कौन सी बड़ी चीज है, नहीं आती, बस असल बात है दिल में खोटा। और एक और बात लिखें, जब अंदर खोट आता है ना, कोई जरा सी जाता ही है तभी दिल उठता है काम से। याद रखिए, अल्लाह ने एक ऐसा सेफ्टी चेक लगाया हुआ है, आप इंग्लिश के लफ्ज को उर्दू में या नॉर्श में किसी में बदलें, सेफ्टी चेक समझते हैं, चेक्स लगा देते हैं ना कि पानी इधर का उधर ना जाए, सेफ्टी लॉक लगा दिए हैं, कुछ कर दिए, मेरे ख्याल हमारे कल्चर में ये लफ्ज बोला जाता है ना, सेफ्टी वॉल तो कहते हैं ना अक्सर। अल्लाह ने अपने काम के रास्ते में एक सेफ्टी वॉल लगाया हुआ है, और वो है दिल की रजा। अंदर की पूरी कन्विक्शन है ना मेरे दिल में कि मैंने आज आना है और मैंने पढ़ाना है और आप सबने मेरे से फायदा लेना है, मैं बीमारी में भी आऊंगी, मैं परेशानी में भी आऊंगी, मैं बर्फ से भी आऊंगी उतर गुजर कर, और मैं जहां से आऊंगी, अंदर मेरे दिल में 5% शक डाल देना कोई, आज कोई आना नहीं है, तुम्हारा फायदा कोई नहीं, इन्होंने तुम्हें पढ़ाने का मौका नहीं देना, तो आप देखें घर से कदम ही नहीं निकलेंगे। एक मसला आएगा ना, उससे भी निपटूंगी तो दूसरे पे पड़ जाऊंगी, दूसरे पे पढ़ूंगी तो तीसरे पे चली जाऊंगी। बिलीव नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक, मैं कहती हूँ ये अल्लाह ताला ने एक अपना क्वालिटी कंट्रोल रखा हुआ है। अच्छी कंपनी होती है ना, क्वालिटी कंट्रोल रखती हैं। मुझे किसी ने कहा, काम करती थी कहीं, शायद कोई बड़ी कोएक्सन की मिल थी, बड़ी सी, मुझे याद नहीं है नाम उसका, तो वो कहती कि हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है, हर गज कपड़ा चेक होता है, अगर मोहर भी टेढ़ी लग गई है ना तो वो पीसीस में चला जाएगा, कि इस नाम की जो फर्म है उसके साथ जो थान जाएगा उसमें कोई इतना सा भी मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए। क्वालिटी चेक, क्योंकि जी गुल अहमद का नाम बड़ा है, अब गुल अहमद आलो ने जी टेढ़ी मोर लगा के भेज दिया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्वालिटी कंट्रोल है। अल्लाह भी क्वालिटी कंट्रोल के तहत पूरे दिल से कोई काम करूंगी ना, तो कल भी करूंगी, परसों भी करूंगी, शाम को भी कर लूंगी, रात को भी कर लूंगी। जहां मेरा दिल बदलेगा ना, मेरे कदम मन मन भर के होंगे। मुझे 100 कीड़े नजर आएंगे आपके इस क्लास में, वल्लाही मुझे आप में 10 बातें नजर आएंगी। क्यों? हुम लिल कुफ्र यौमइज़िन अक़रब मिनहुम अल-ईमान। देखिए ये अल्लाह के लफ्ज पढ़िए, ये लोग उस दिन ईमान की निस्बत कुफर से करीब तर थे। भाई है तो 1,000 थे, 300 क्यों पलटे? क्योंकि हुम लिल कुफ्र यौमइज़िन, इनके अंदर ना शुक्रिया आ गई थी। कुफर क्या है? ना शुक्री, अनग्रेटफुलनेस, या कोई इनकार छुप गया था, कोई कीड़ा आ गया अंदर, वो ज्यादा करीब थे ईमान की निस्बत कुफर से। यकुलूना भी अफवाहिहिम, वो कहते हैं अपने मुंहों से, मा लैसा फी कुलूबिहिम, जो दिलों में नहीं है। देखिए मुंह से जो उजर बना रहे हैं वो दिल में कोई नहीं होता, झूठ बोल रहे होते हैं। जो मजबूरी वो बयान करते हैं वो मजबूरी नहीं होती, वो झूठा उजर होता है, और ऐसा होता है बिल्कुल। कोई बात नहीं, वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, अल्लाह उस चीज को खूब जानता है जो कुछ वो छुपा रहे हैं। इंसानों से छुपा सकते हैं, अल्लाह से कुछ छुपा सकता है? नहीं छुपा सकता। कोई बंदा अल्लाह से अपने दिल की बातें नहीं छुपा सकता, तो इन आयतों को सुनते सुनाते हुए डरना है। मैंने भी और आपने भी, हम सब जैसे ही थे। वो अब्दुल्ला बिन उबई तो 5 वक्त मस्जिद में नमाज भी पढ़ता था, आज के तो बहुत नेक लोग 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इसके बावजूद देखिए, या फिर नोट कीजिए एक बात, अब्दुल्ला बिन उबई ने मस्जिद में जाने से इनकार नहीं किया, जिहाद में अल्लाह के रास्ते में जाने का इनकार था। तो आज हम उन मुसलमानों के बारे में क्या सोच सकते हैं कि जो मस्जिद में जाने का इनकार तो है ही सो है, अल्लाह के रास्तों का इनकार है। इल्म की बातें नहीं अच्छी लगती, दूसरी बातें अच्छी नहीं लगती, अल्लाह ताला कहते सोचो। बाहमी इख्तलाफ पैदा हुआ, रसूल की नाफरमानी की, माल की मोहब्बत में मुबतला हुए, सबर का दामन छोड़ दिया, तुमने इतने बड़े जुर्म किए, अल्लाह को परवाह ही नहीं। नोट करेंगे एक बड़ा खूबसूरत नुकता है, जो चले गए ना साथ, उनसे 10 गलतियां हुई हैं जाने के बाद भी। पढ़ रहे हैं ना, 2 दिन हो गए आपको, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे, इतनी गलतियां हुई लेकिन अल्लाह ने कहा लकद अल्लाहम, ए नबी चुप, वस्तक फिर लो, माफ बख्शिश मांगे इनके लिए, मेरे इन प्यारों को कुछ ना कहना हुई, अल्लाह के नबी इनसे गलती होने दे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ये दरा छोड़, कोई बात नहीं, होने दो, 100 गलतियां भी करते मैं इनको अल्लाह अन्हुम, बट ये अब्दुल्ला बिन उबई की पार्टी को मैं नहीं माफ करूंगा, क्योंकि इन्होंने मुश्किल में दीन को छोड़ा। और आज के दौर आपको लगता है इस्लाम के लिए मुश्किल दौर है? आज मुसलमानों को काम करना चाहिए दीन के लिए? क्या आज इल्म को काम करना चाहिए? ये जो 4 नुक्ते पड़े हैं पीछे, क्या इनकी जरूरत है आज? तथहीर उम्मत की जरूरत है, तज़किए की तरबियत की जरूरत है, कुरान सुन्नत को आम करने की जरूरत है, फिर हम घरों में बैठे रहे, फिर पार्टी मूड में हो, फन मूड में हो, दावत मूड में हो, शादी मूड में हो, पार्टी मूड, और हम हफ्तों के हफ्तों जाया कर देते हैं, महीने जाया हो जाते हैं एक खुशी के नाम पे। कितनी नमाजें कुर्बान होती हैं हमारी एक शादी के मौके पे, कितनी ज्यादा आप देखिए कि हमारी जिंदगी में चेंज आ जाती है, जरा सी अच्छा बुरा मामला हमारे सामने होता है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आने वालों को माफ कर दूंगा, छोड़ने वालों को माफ नहीं करूंगा। ये अब्दुल्ला बिन उबई के ऊपर तबसरा, और इसके बारे में अल्लाह के नबी को ख्वाब में भी दिखाया गया था। एक हदीस सुनिए, बड़ी खूबसूरत है, बुखारी की रिवायत है, 4081 नंबर है। आपको ख्वाब में इशारा किया गया, अबू मूसा शरीफ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने तलवार को हिलाया तो इसका अगला हिस्सा टूट गया। इसकी ताबीर इस नुकसान की सूरत में जाहिर हुई जो मुसलमानों को खुद में उठाना पड़ा। मैंने दोबारा इस तलवार को हिलाया तो पहले से भी ज्यादा शानदार बन गई। کیا اس کی تعبیر اس طرح سامنے آئی کہ اللہ نے مسلمانوں کو وقتی شکست کے بعد فتح سے نوازا اور منتشر مسلمان نئے سرے سے لڑائی کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور میں نے خواب میں ایک گائے بھی دیکھی جو ذبح ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے کاموں میں خیر و برکت ہوتی ہے، گائے سے مراد وہ مسلمان تھے جو احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو اللہ اشاروں میں دکھا رہا تھا کہ ولی عالم المومنین، یہ مومنوں کو واضح کیا جا رہا تھا، اور منافقوں کے حالات تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا کھوٹ کھپٹ ختم کر دے، یہ نہ کہیں کہ چھپا دے، نہیں ظاہر ہو جائے گا۔ لی عالم الذین نافقوا، یہ ہو کے رہے گا، ریالٹی کبھی نہیں چھپتی، سچ کبھی نہیں چھٹتا۔ منافق مسلمانوں کی دوستیوں کا دم بھریں، دل کفر اور نفاق سے بھرے ہوتے ہیں، مشکل وقت میں پتہ چل جاتا ہے کون کہاں تھا، کیسے تھا، یہ تھا، یہ تبصرے کرتے، یہ تنقید کرتے۔ آج دیکھیے تبصرے کتنے عام ہیں، آج بیٹھ کے ایسی باتیں کرنے والے شاید زیادہ ہیں ایسے میدان جنگ میں جانے والے، اور یقولون بافواہہم، منہوں سے باتیں، آج تو باتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ ہر بندہ تبصرے کے نام پہ، ٹاک شو کے نام پہ بڑی بڑی باتیں کرتا دکھتا ہے، بڑے بڑے دینداروں پہ باتیں کرتے ہیں۔